हेलो दोस्तों, आज है 1 सितंबर 2025 दिन सोमवार का, हिंदी तिथि भाद्रपद शुक्ल नवमी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, देश और दुनिया का ताजा अपडेट लेकर हाजिर हो गए हैं। आज का ये वीडियो भी बहुत ही स्पेशल होने वाला है, देश और दुनिया के ताजा अपडेट जानेंगे। किसान भाइयों के लिए, कर्मचारियों के लिए, पढ़ने वाले बच्चों के लिए, युवाओं के लिए, माताओं और बहनों के लिए काफी सारे महत्वपूर्ण अपडेट आए हैं। देश के अलग अलग राज्यों से बड़ी खबरें जानेंगे। तो बिना टाइम विलंब के शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। सबसे पहले अलर्ट करने वाली खबर से शुरुआत करते हैं। आप देखिए किस तरह से हमारी यूथ यानी 15 से 16-17 साल की उम्र के जो बच्चे हैं वो डिजिटल ड्रग एडिक्ट हो रहे हैं। अभी हाल ही में मध्य प्रदेश में से कई मामले सामने आए और ये एक नशे की नई लत के रूप में मामले बन रहे हैं। लेकिन अब ये जो नशा है वो दोस्तों बहुत ही अलग तरह का है, ये है डिजिटल नशा। जैसे ही इंटरनेट पर डिजिटल ड्रग नाम से आप कोई भी सर्च करेंगे तो एक लंबी लिस्ट सामने आ जाती है। और ये डिजिटल ड्रग बिना बोल वाले ट्रैक साउंड होते हैं जिसकी धुन पर बच्चे और युवा फंसते ही जा रहे हैं। डिजिटल ड्रग का ये नशा 15 से 25 साल की उम्र के बच्चों और युवाओं में तेजी से फैल रहा है। छोटी उम्र के बच्चे एडिक्ट हो रहे हैं। 15 से 25 साल की उम्र के बच्चों और युवाओं में ये डिजिटल ड्रग का नशा तेजी से फैल रहा है। 8 से 10 घंटे तक कानों में हेडफोन लगा के डिजिटल या ट्रांस म्यूजिक सुनने की आदत पड़ जा रही है। और ऐसे में इन बच्चों के जीवन के जो महत्वपूर्ण काम है वो प्रभावित हो रहे हैं। ये बच्चे न तो घर वालों की बात सुनते हैं और न ही उनसे बातचीत करना पसंद कर रहे हैं। यूट्यूब या अन्य म्यूजिक ऐप पर भी इस तरह के कई सारे म्यूजिक बीट्स हैं जिन्हें ये बच्चे घंटों सुनते हैं और इसके आदि हो रहे हैं। अभी हाल ही में भोपाल में हॉस्पिटलों में इस तरह से मामले देखने को मिले और डॉक्टरों ने इस तरह से अपडेट जानकारियां दी हैं। विशेषज्ञों के अनुसार डिजिटल ड्रग भी एक तरह से ये एडिक्शन है, इसलिए इस तरह की किसी भी म्यूजिक को हेडफोन से जितना कम हो सके सुना जाए तो ठीक है। और म्यूजिक सुनते हैं तो भी आप ध्यान दीजिएगा 60-60 नियम का पालन करें। इस नियम का अर्थ है कि आप 60% वॉल्यूम में म्यूजिक सुने और 60 मिनट से ज्यादा ना सुने। और अगर आप कोई भी ट्रांस म्यूजिक सुन रहे हैं तो ये नियम तो फॉलो करना बहुत जरूरी है ही। 130 से 160 BPM पर ही म्यूजिक सुने। और पेरेंट्स भी ध्यान रखें, बच्चों को समझाना पड़ेगा कि जहां तक संभव हो सके फोन और लैपटॉप में जो स्पीकर है इसी का इस्तेमाल किया जाए। बच्चे निर्धारित समय से ज्यादा हेडफोन का इस्तेमाल ना करें क्योंकि ये उनके लिए खतरनाक है। और परिजन खुद बच्चों के सामने लंबे समय तक हेडफोन या ईयरफोन का इस्तेमाल ना करें। कान में ऐसे छोटे छोटे हेयर सेल्स होते हैं जो तेज आवाज से नष्ट हो जाते हैं। जितने अधिक सेल्स नष्ट होंगे उतना ही कम सुनने की क्षमता होगी। चिंता की बात तो यह है कि ये सेल दोबारा उगते नहीं है। ये बात हम नहीं कह रहे हैं, ये ENT विशेषज्ञों के मुताबिक अपडेट है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बड़ी खबर, महाशक्तियों की आज महाबैठक भी होने वाली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पुतिन से मिलेंगे। SCO समिट के ज्वाइंट स्टेटमेंट पर दुनिया की निगाह टिकी हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से तियानजिन में मुलाकात कर आतंकवाद, व्यापार और सहयोग पर चर्चा की। दोनों नेताओं ने वैश्विक आर्थिक चुनौतियों, ट्रंप टैरिफ और व्यापार घाटे पर भी विचार किया। आज सोमवार को SCO लीडर्स की बैठक होने वाली है जिसमें सभी सदस्य देशों के नेता शामिल होंगे, हिस्सा लेंगे। और इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पुतिन के बीच द्विपक्षीय बैठक भी होगी। पीएम मोदी ने चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से तियानजिन में मुलाकात की, आपसी सहयोग पर भरोसा जताया है। वहीं मोदी ने जिनपिंग को भारत आने का न्योता दिया, आतंकवाद से लड़ने में चीन का साथ मांगा। 7 साल बाद चीन पहुंचे पीएम नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात की। दोनों के बीच 50 मिनट तक बातचीत हुई है। जिनपिंग की पसंदीदा रेड फ्लैग कार में भी पीएम मोदी घूमे। ये कार चीन की रोल्स रॉयस कही जाती है और खुद राष्ट्रपति शी जिनपिंग भी इसी कार का इस्तेमाल करते हैं। वहीं पीएम मोदी 30 अगस्त को पूरे 7 साल बाद चीन पहुंचे। और ऐसे में मोदी के चीन दौरे को दुनिया भर का मीडिया भी कवर कर रहा है। अलग अलग अखबारों ने अलग अलग हेडलाइंस के जरिए खबरें छापी है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने छापा कि SCO समिट में चीन दुनिया को अपनी ताकत दिखाएगा। न्यूयॉर्क टाइम्स ने मोदी, जिनपिंग और पुतिन की तस्वीर के साथ एक रिपोर्ट में लिखा है, शी जिनपिंग के लिए इससे बेहतर मौका शायद ही कोई हो सकता था। एक तरफ भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं जिनके देश पर राष्ट्रपति ट्रंप ने ऊंचे टैरिफ लगाए हैं, दूसरी तरफ रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन। वहीं CNN ने लिखा कि ट्रंप से नाराजगी के बीच चीन में पुतिन, मोदी का रेड कार्पेट वेलकम। वहीं BBC ने लिखा कि ट्रंप के टैरिफ से भारत चीन परेशान, ट्रेड को पटरी पर लाने की कोशिश में जुटे। राइटर्स ने लिखा कि भारत और चीन आपसी संबंध सुधारने के लिए तैयार। इधर अल जजीरा ने भी अपनी रिपोर्ट में छापा है कि SCO समिट में अमेरिकी ट्रेड वार और भारत चीन संबंधों पर चर्चा। तो अलग अलग मीडिया रिपोर्ट्स में, बड़े बड़े अखबारों में इंटरनेशनल लेवल की ये खबरें चल रही हैं। डोनाल्ड ट्रंप का जापान पर अमेरिकी चावल खरीदने का दबाव। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप जापान पर अमेरिकी चावल के लिए बाजार खोलने का दबाव बना रहे हैं और इस वजह से जापान के मुख्य वार्ताकार, जिन्होंने भी हाल ही में अमेरिका दौरा भी रद्द कर दिया है। वहीं आपको बताएं, अमेरिका ने इसी तरह का दबाव भारत पर भी बनाया था। अमेरिका ये चाहता था कि भारत उनकी मांसाहारी गायों का दूध खरीदे, साथ ही उनके किसानों के लिए भारत अपना मार्केट ओपन करें, लेकिन भारत ने इससे साफ इनकार कर दिया था। चलिए बड़ी खबर देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को रेडियो शो मन की बात के 125वें एपिसोड में प्राकृतिक आपदा, खेल खिलाड़ी, इनोवेशन, शिक्षा, वोकल फॉर लोकल पर बातचीत की है। उन्होंने कहा कि इस मानसून के मौसम में प्राकृतिक आपदाएं हमारे देश की परीक्षा ले रही हैं। हम उन परिवारों के दुख में शामिल हैं जिन्होंने अपने प्रियजनों को खोया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर, तेल कंपनियों ने कॉमर्शियल LPG गैस सिलेंडर के दामों में कटौती की है। 19 किलो वाले कॉमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमत 51.5 रुपए कम की गई है और ये नई दरें आज 1 सितंबर से लागू हो जाएगी। दिल्ली में अब 19 किलो का कॉमर्शियल गैस सिलेंडर 1580 रुपए में मिलेगा। हालांकि आपको बताएं, घरेलू गैस सिलेंडर 14.2 किलो वाले, इस सिलेंडर में कोई बदलाव नहीं किया गया है। मौसम और मानसून से जुड़े अपडेट तो हम आगे देखेंगे, लेकिन इससे पहले देखिए आप, मौसम विभाग ने एक बड़ा अपडेट जारी किया है। IMD ने सितंबर की रिपोर्ट जारी की है और कहा कि सामान्य से 109% भारी बारिश का पूर्वानुमान है। कई इलाकों में बाढ़ का खतरा भी बताया है। देश के कई हिस्सों में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश, बादल फटने की घटनाएं, लैंडस्लाइड और बाढ़ जैसी घटनाओं के बीच IMD ने अपनी मासिक रिपोर्ट जारी कर दी है और इस रिपोर्ट के मुताबिक सितंबर के महीने में सामान्य से अधिक बारिश होने की संभावनाएं हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बड़ी खबर आ रही है। अफगानिस्तान में रविवार रात को एक बार फिर से भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए हैं। पाकिस्तान सीमा के पास दक्षिण पूर्वी अफगानिस्तान में भूकंप के तेज झटके महसूस हुए। भूकंप की तीव्रता 6 की मापी गई है, 6.0 तीव्रता रही। भूकंप के तेज झटकों के चलते लोग दहशत में घरों से बाहर निकल आए। अफगानिस्तान में बीते एक महीने में यह 5वीं बार भूकंप आया और इस बार भी तीव्रता काफी ज्यादा रही, 6 की तीव्रता रही। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह रविवार को जम्मू कश्मीर में भारी बारिश और अचानक आई बाढ़ के बाद की स्थितियों का आकलन करने के लिए पहुंचे। जम्मू कश्मीर में बाढ़ से भारी तबाही और लोगों की जाने गई है। गृह मंत्री अमित शाह आज राजभवन में एक हाई लेवल बैठक की अध्यक्षता भी करेंगे। अमित शाह ने गुजरात में डायल 112 सेवा की शुरुआत की है, अब एक ही जगह पर आपात सुविधाएं मिलेगी। अमित शाह ने रविवार को गुजरात सरकार की डायल 112 आपातकालीन प्रतिक्रिया सहायता प्रणाली की शुरुआत की है। अब सभी प्रकार की सुरक्षा संबंधी सेवा के लिए एक ही नंबर उपलब्ध होगा। अमित शाह ने कहा कि डायल 112 सेवा गुजरात के लोगों को विभिन्न प्रकार के टोल फ्री नंबरों से मुक्ति दिलाएगी, जैसे पुलिस के लिए 100 नंबर, एम्बुलेंस के लिए 108 नंबर, अग्निशमन के लिए 101 नंबर, तो ऐसे अलग अलग नंबर डायल नहीं करने पड़ेंगे। 112 डायल 112 सेवा शुरू हो गई है, तमाम आपातकालीन सुविधाएं एक ही कॉल पर मिल सकेंगी। बड़ी खबर देखिए, दिल्ली वासियों के लिए आ गई है। दिल्ली सरकार ने दीपावली से पहले व्यापारियों को 1600 करोड़ रुपए का जो लंबित GST रिफंड है वो देने का ऐलान कर दिया है, जो 2019 से अटका हुआ था। दिल्ली की बीजेपी सरकार ने स्थानीय व्यापारियों के हित में यह बड़ा ऐलान कर दिया है। रविवार को एक हाई लेवल बैठक के बाद ये घोषणा की गई है कि इस वर्ष दीपावली से पहले साल 2019 से लंबित लगभग 1600 करोड़ रुपए का GST रिफंड दिल्ली के व्यापारियों के बैंक खातों में पहुंच जाएगा। साथ ही आपको बताएं, आज 1 सितंबर का दिन है और आज 1 सितंबर से नए नियम भी लागू होने जा रहे हैं। अगर आपने नए नियम वाला वीडियो नहीं देखा तो आप वीडियो सेक्शन में जाकर जरूर देखिएगा, उस वीडियो में तमाम अपडेट आपको दिखाए गए हैं। हर महीने की 1 तारीख को कई नियमों में बदलाव होता है, जैसे LPG गैस सिलेंडर के रेट में बदलाव हो ही गया, आपने अभी जान लिया। क्रेडिट कार्ड से जुड़े नियमों में भी बदलाव हो जाएगा। रिवार्ड पॉइंट वगैरह के नियमों में भी संशोधन हो गया है। चांदी के लिए हॉलमार्किंग की सेवाएं भी आज से शुरू हो रही हैं। ITR फाइलिंग की डेट भी आपको ध्यान रखनी है। नए नियम वाला वीडियो आप जरूर देखिए, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगा। चलिए बड़ी खबर देखिए, जस्टिस नाथ ने कहा कि आवारा कुत्तों ने दुनिया भर में फेमस किया, उनकी भी दुआएं मिल रही, 10 साल पहले फैसला सुनाया था। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस विक्रम नाथ ने शनिवार को कहा कि मैं लंबे समय से कानून जगत में अपने छोटे मोटे कामों के लिए जाना जाता था। मैं आवारा कुत्तों का आभारी हूँ जिन्होंने मुझे न केवल देश में बल्कि दुनिया भर में फेमस कर दिया। वहीं आप देखिए, राहुल गांधी का नाम लिए बिना रिजिजू ने कहा कि वे चर्चा नहीं चाहते, ये सिर्फ पॉलिटिकल ड्रामा, इससे विपक्ष का नुकसान, हमारा बहुमत, हमें कोई समस्या नहीं है। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने राहुल गांधी का नाम लिए बिना कहा कि अगर किसी दल का नेता बहस या चर्चा में रुचि नहीं रखता है और सिर्फ राजनीतिक ड्रामा करना चाहता है तो विपक्ष का नुकसान हो रहा है, सरकार का नहीं। सरकार बहुमत में है और चाहे तो विधेयक पास करवा लेगी, लेकिन इससे विपक्ष के सांसदों का ही नुकसान होगा। वहीं आप देखिए, भारत बना यूक्रेन का सबसे बड़ा डीजल सप्लायर, जुलाई में हर दिन 2700 टन डीजल बेचा। भारत ने जुलाई 2025 में यूक्रेन को सबसे ज्यादा डीजल सप्लाई किया है। यूक्रेन की ऑयल मार्केट एनालिटिक्स फर्म नाप्टोरिनोक ने इस बात की जानकारी दी है। वहीं आप देखिए, यूके को कपड़ा बेचकर अमेरिकी घाटे की भरपाई करेगा भारत। अमेरिका ने भारतीय टेक्सटाइल सामान पर 50% टैरिफ लगाया है, जो 27 अगस्त से लागू हो गया है और इससे भारत के टेक्सटाइल और कपड़ा एक्सपोर्ट पर असर देखने को मिल सकता है। हालांकि एक अच्छी खबर यह है कि भारत यूके फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के कारण ब्रिटेन को एक्सपोर्ट में बढ़ोतरी से इस नुकसान की भरपाई हो सकती है, इस तरह की बात कैरेज रेटिंग्स की रिपोर्ट में सामने आई है। अमेरिकी टैरिफ से पंजाब को 30,000 करोड़ का नुकसान बताया जा रहा है, 8,000 करोड़ तो केवल कपड़ा निर्यात की वजह से। कई ऑर्डर होल्ड होने लगे हैं, यानी अब धीरे धीरे असर दिखना शुरू हो गया है, कई इंडस्ट्रियलिस्ट के ऑर्डर रुक गए हैं। वहीं बड़ी खबर आप देखिए, राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा का समापन आज 1 सितंबर को पटना में होगा। इस यात्रा में महागठबंधन के प्रमुख नेता शामिल होंगे। 17 अगस्त को सासाराम से शुरू हुई ये 16 दिन की यात्रा 1300 किलोमीटर का सफर तय कर चुकी है और ये यात्रा 24 जिलों से होकर गुजरी है। बिहार में SIR के बाद चुनाव आयोग जारी करेगा नया वोटर कार्ड। 30 सितंबर को अंतिम मतदान मतदाता सूची जारी होगी। खबरें आ रही है, बताया जा रहा है कि बिहार में मतदाता सूची के विशेष पुनरीक्षण के बाद चुनाव आयोग नया वोटर कार्ड जारी करने की योजना बना रहा है। अंतिम मतदाता सूची 30 सितंबर को प्रकाशित हो जाएगी। राजनीतिक दलों और निर्वाचकों ने नाम हटाने के लिए सबसे अधिक आपत्तियां दर्ज कराई हैं। पहली बार मतदाता बनने के लिए लगभग 15,32,000 लोगों ने आवेदन किया है। बड़ी खबर देखिए आप, रूस ने हमले तेज कर दिए हैं। यूक्रेन के पावर प्लांटों को निशाना बनाया गया, 60,000 लोग अंधेरे में रहने को मजबूर हो गए। रूस ने यूक्रेन के ऊर्जा संयंत्रों और यातायात सुविधाओं पर अब हमले तेज कर दिए हैं, जिससे 60,000 लोग अभी अंधेरे में रहने को मजबूर हो गए। यूक्रेन भी रूस के तेल शोधक कारखानों को लगातार निशाना बना रहा है। वहीं राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कहा कि यूक्रेन रूस के भीतर हमले करने के लिए तैयार है। ये लड़ाई का दौर अभी जारी है। वहीं आप देखिए महाराष्ट्र से बड़ी खबर में, फडणवीस सरकार गोलियां चलाए तब भी नहीं हटेंगे। मराठा आरक्षण पर आर पार के मूड में नजर आ रहे मनोज जरांगे। मनोज जरांगे ने रविवार को महाराष्ट्र के देवेंद्र फडणवीस सरकार से उपलब्ध रिकॉर्ड के आधार पर मराठा आरक्षण पर सरकारी आदेश जारी करने की मांग की। जरांगे ने आजाद मैदान में कहा कि जब तक मांगे पूरी नहीं हो जाती हम धरना स्थल से नहीं हटेंगे, भले ही फडणवीस सरकार हम पर गोलियां चलाए। वह शुक्रवार से दक्षिण मुंबई के आजाद मैदान में आमरण अनशन कर रहे हैं। उन्होंने एक बार फिर यह दावा किया कि मराठा कुनबी की एक उपजाति है। कुनबी कृषि प्रधान जाति है, जिसे अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी के अंतर्गत आरक्षण का लाभ मिलता है। मुंबई के आजाद मैदान में मनोज जरांगे भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। वहीं सरकार की ओर से एक प्रतिनिधि मंडल ने भी मनोज जरांगे से मुलाकात की है, हालांकि जो बैठक हुई वो बेनतीजा रही। कुल मिलाकर दोस्तों, मुंबई में मराठा आरक्षण आंदोलन जो है वो फिर से शुरू हुआ है। और इसी बीच एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार ने शनिवार को कहा कि इन मुद्दों को हल करने के लिए संवैधानिक संशोधन जरूरी है, क्योंकि आरक्षण पर एक सीमा लगी हुई है। उन्होंने कहा कि 80% मराठा लोग खेती पर निर्भर हैं, लेकिन केवल कृषि उनके भविष्य को सुरक्षित नहीं कर सकती, इसलिए आरक्षण ही एकमात्र विकल्प है। वहीं मनोज जरांगे के मराठा आरक्षण आंदोलन के बीच छगन भुजबल भी एक्शन में है। ओबीसी नेताओं की बैठक बुलाई गई। मराठा आरक्षण की मांग को लेकर मनोज जरांगे पाटिल के आंदोलन के बीच महाराष्ट्र सरकार में मंत्री और वरिष्ठ एनसीपी नेता छगन भुजबल ने सोमवार को मुंबई में ओबीसी नेताओं की बैठक बुलाई है। आपको बताएं, भुजबल महाराष्ट्र की राजनीति में ओबीसी समुदाय के एक प्रभावशाली नेताओं में से एक हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, बड़ी खबर जो ये भी महाराष्ट्र से आ रही है। महाराष्ट्र की फडणवीस सरकार ने भी हाल ही में 17 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए हैं और ये एमओयू लगभग 34,000 करोड़ रुपए के हैं और ऐसे में अनुमान है कि 33,000 नए रोजगार पैदा होंगे। बिहार चुनाव पर अमित शाह ने दिल्ली में बीजेपी की बड़ी बैठक बुलाई है, दोनों डिप्टी सीएम भी शामिल होंगे। बिहार चुनाव के मद्देनजर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 3 सितंबर को बीजेपी की बड़ी बैठक बुलाई है, जिसमें बिहार भाजपा अध्यक्ष दिलीप जायसवाल, दोनों उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी विजय सिन्हा समेत भाजपा सांसद शामिल होंगे। चुनाव को देखते हुए बैठक काफी महत्वपूर्ण होने वाली है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बड़ी खबर, चुनाव आयोग ने कांग्रेस द्वारा लगाए गए आरोपों का खंडन करते हुए कहा कि मतदाता सूची से नाम काटने की प्रक्रिया पूरी तरह से कानूनी और नियमानुसार है। कर्मचारियों से जुड़ी बड़ी खबर में आप देखिए, केंद्रीय कर्मचारियों के लिए CGHS कार्ड की कितनी महत्वपूर्ण अहमियत है ये तो हम सभी जानते हैं। ये एक तरह का भरोसा है और ये इस बात की गारंटी है कि बुढ़ापे में या किसी मुश्किल बीमारी में सरकार उनके और उनके परिवार के साथ खड़ी है। साल 1954 से चली आ रही ये सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम करोड़ों कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए किसी सुरक्षा कवच से कम नहीं। अब सूत्रों के मुताबिक ऐसी खबरें आ रही है जिसमें बताया जा रहा है कि केंद्र सरकार केंद्रीय कर्मचारियों के लिए एक नई इंश्योरेंस स्कीम ला सकती है और ये भी हो सकता है कि 8वें वेतन आयोग की सिफारिशों के साथ ही सरकार CGHS की एक बिल्कुल नई स्कीम लेकर आए जो आधुनिक और इंश्योरेंस आधारित हेल्थ स्कीम हो। तो ऐसे अपडेट भी चल रहे हैं। बिहार चुनाव को लेकर मायावती ने बड़ा ऐलान किया है, राज्य में अकेले चुनाव लड़ेगी बसपा। बिहार में इसी साल के अंत तक विधानसभा चुनाव होने हैं और इसे लेकर सभी दल तैयारियों में जुटे हुए हैं और इसी बीच बसपा प्रमुख मायावती ने भी बिहार चुनाव में अकेले ही उतरने का ऐलान कर दिया है। बड़ी खबर आ रही है जम्मू कश्मीर को लेकर, वैष्णो देवी मंदिर में दर्शन करने जाने वाले तीर्थयात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कटरा प्रशासन ने महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए हैं। यहाँ पर प्रशासन की ओर से संवेदनशील क्षेत्रों में स्थित होटल सहित व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को तत्काल खाली कराने के आदेश दिए गए। अधिकारियों ने कहा कि त्रिकुटा पहाड़ियों पर स्थित माता वैष्णो देवी मंदिर की तीर्थ यात्रा रविवार को खराब मौसम के कारण लगातार 6ठे दिन भी स्थगित रही। बड़ी खबर आप देखिए, भारत की गैर लाभकारी संस्था यानी NGO एजुकेट गर्ल्स को एशिया का सबसे बड़ा सम्मान रेमोन मेग सायसाय अवार्ड 2025 मिला है। ये सम्मान दूर दराज के गाँव की उन लड़कियों की शिक्षा के लिए दिया गया है जो स्कूल से बाहर रह जाती है। सफीना हुसैन द्वारा साल 2007 में स्थापित इस संस्था ने राजस्थान से शुरुआत की और अब तक 20 लाख से ज्यादा लड़कियों को शिक्षा से जोड़ा है। अवार्ड पाने वाली पहली भारतीय संगठन बनी है। लड़कियों की शिक्षा के लिए संस्था काम करती है। चलिए बड़ी खबर उड़ीसा से आ रही है। उड़ीसा में ईडी ने बैंक धोखाधड़ी मामले में खनन कारोबारी शक्ति रंजन दास पर शिकंजा कसा है। भुवनेश्वर में छापेमारी के दौरान बड़ी कार्रवाई हुई, लग्जरी गाड़ियां, नकद और गहने जब्त किए गए। 1396 करोड़ के बैंक घोटाले से जुड़े अपडेट हैं। बड़ी खबर आ रही है दिल्ली से, इंदौर आ रही फ्लाइट के इंजन में आग लग गई। अलर्ट मिलने पर एयर इंडिया के विमान की इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई, सभी पैसेंजर सुरक्षित हैं। दिल्ली से इंदौर आ रही एयर इंडिया की फ्लाइट AI-2913 में टेक ऑफ के कुछ ही देर बाद तकनीकी खराबी आ गई, सभी पैसेंजर सुरक्षित हैं। वहीं आप देखिए अगस्त 2025 में फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स यानी FPI ने भारतीय शेयर बाजार से करीब 35,000 करोड़ रुपए निकाले हैं। ये पिछले 6 महीनों में सबसे बड़ी बिकवाली है। राजस्थान से जुड़ी ये बड़ी खबर देखिए आप। राजस्थान में जबरन धर्मांतरण कराने पर उम्र कैद की सजा। जी हां, विधानसभा सत्र से पहले रविवार को भजनलाल कैबिनेट ने राजस्थान विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध विधेयक को कुछ संशोधनों के साथ मंजूरी दी है और इस बिल के नए ड्राफ्ट में जबरन धर्म परिवर्तन पर उम्र कैद तक की सजा समेत कई कड़े प्रावधान किए गए हैं। राजस्थान में आज सोमवार से विधानसभा का सत्र शुरू होने जा रहा है। सत्र से पहले CMR में बीजेपी विधायक दल की बैठक भी हुई। बैठक को संबोधित करते हुए CM भजनलाल शर्मा ने मंत्रियों से कहा कि वे सदन में पूरी तैयारी के साथ जाएं, वहीं पूछे गए प्रश्नों का जवाब दें। साथ ही बड़ी खबर आप देखिए, राजस्थान में जैसलमेर में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने SI भर्ती 2021 परीक्षा को रद्द करने के कोर्ट के फैसले पर अपनी राय रखी है। उन्होंने कहा कि मैंने फैसले को पढ़ा नहीं है, लेकिन जितने अंश देखे हैं उससे समझ में आया कि कोर्ट ने ये निर्णय राज्य सरकार पर छोड़ा है। उन्होंने कहा कि कुछ लोगों ने पाप किया और दूसरे उसका दंड भरे, ये बात उचित नहीं है और इसी दृष्टिकोण से राज्य सरकार इस विषय पर विचार कर रही है। उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि विस्तार से एक बार फैसले की समीक्षा करने की आवश्यकता है, आदेश की समीक्षा होकर सबके सामने क्लैरिटी हो जाएगी। साथ ही राजस्थान जेल प्रहरी के 968 रिक्तियों के लिए परिणाम घोषित कर दिया गया है। कर्मचारी चयन बोर्ड ने जेल प्रहरी भर्ती परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया है। राजस्थान में भी LPG गैस सिलेंडर सस्ता हुआ है। कंपनियों ने कमर्शियल सिलेंडर पर 51 रुपए कम किए हैं। वहीं घरेलू गैस सिलेंडर की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। जोधपुर कमिश्नरेट में ड्रोन उड़ाने पर पाबंदी, 1 सितंबर से आदेश लागू होगा। कार्यक्रमों में ड्रोन उड़ाने पर भी अनुमति लेनी पड़ेगी, यह आदेश लागू हो गया है। राजस्थान के उदयपुर में 51 दिव्यांग जोड़े विवाह बंधन में बंधे, जोड़ों में कोई आंखों से तो कोई हाथ पैरों से दिव्यांग था। नारायण सेवा संस्थान ने इसका आयोजन किया। बड़ी खबर देखिए, राजस्थान के जैसलमेर से 3 शहरों के लिए फ्लाइट शुरू होने जा रही है। इंडिगो कंपनी ने इसका शेड्यूल भी जारी कर दिया है। 1 अक्टूबर से दिल्ली के लिए हवाई सेवा शुरू होगी, इसके बाद 26 अक्टूबर से मुंबई और जयपुर के लिए भी हवाई सेवाओं की शुरुआत की जाएगी। साथ ही आप देखिए मध्य प्रदेश से भी खबर आ रही है। मध्य प्रदेश में BJP ने देवास, हरदा, सागर, ग्रामीण और महूगंज के लिए पार्टी की कार्यकारिणी घोषित कर दी है। बाकी जिलों के लिए जल्द ऐलान किया जाएगा। वहीं मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले के कोलारस तहसील के ग्राम मोहराई में एक धार्मिक कार्यक्रम के दौरान नकली घी से बने हलवा खाने से 250 लोग बीमार हो गए। लोगों को हलवा खाने के कुछ देर बाद उल्टियां होने लगी। रविवार शाम को एक कार्यक्रम में हलवा परोसा गया था। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक करीब 250 लोग बीमार हुए हैं और 175 लोगों को उल्टी दस्त का उपचार दिया गया। 2 मरीजों को हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। छत्तीसगढ़ में एक्सप्रेस ट्रेनों का स्टॉपेज बहाल हो गया है। बिलासपुर जोन में 52 ट्रेनों को ठहराव की सुविधा मिल गई है। 4 साल बाद छोटे स्टेशनों पर भी ट्रेनें रुकेंगी। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे बिलासपुर जोन में यात्रियों को एक बड़ी सुविधा मिली है। जोन में कुल 52 ट्रेनों को ठहराव की अनुमति दी गई है। इनमें छत्तीसगढ़ के 33 स्टेशनों पर ये ट्रेनें रुकेंगी। बिलासपुर जिले में 22 ट्रेनों का स्टॉपेज छोटे स्टेशनों को मिला है। कोरोना काल में बंद हो गई थी, वापस चालू की गई है। छत्तीसगढ़ से बड़ी खबर आ रही है, सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स को महंगाई भत्ता की बकाया किस्त नहीं मिलने से भारी आर्थिक नुकसान हो रहा है। इससे उनकी ग्रेच्युटी और पेंशन पर भी असर पड़ रहा है। सरकारी सेवा नियमों के अनुसार कर्मचारियों के वेतन में हर साल न्यूनतम 3% की बढ़ोतरी होती है। महंगाई भत्ते की घोषणा के पूर्व सेवानिवृत्त होने वालों को ज्यादा हानि, बकाया DA नहीं मिलने से कर्मचारियों को ग्रेच्युटी और पेंशन में भी नुकसान हो रहा है, ऐसी खबरें आ रही हैं। यूपी से बड़ी खबर आप देखिए, यूपी में घुमंतु और विमुक्त जातियों के लिए विशेष बोर्ड बनेगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार को बड़ी घोषणा की। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार घुमंतु और विमुक्त जातियों के कल्याण के लिए एक विशेष बोर्ड का गठन करेगी। साथ ही इन जातियों के लोगों को कॉलोनियां और मकान उपलब्ध कराने की योजना पर भी काम किया जाएगा। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जन शिकायतों और समस्याओं के समाधान में लापरवाही किसी भी दिशा में अक्षम्य है। CM योगी आदित्यनाथ ने अफसरों को चेतावनी देते हुए कहा, IGRS और CM हेल्पलाइन के माध्यम पर प्राप्त हो रही प्रत्येक जन शिकायत और समस्या का शिकायतकर्ता की दृष्टि से संतुष्टिपरक समाधान होना ही चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार जनता के प्रति जवाबदेह है, जनता सर्वोपरि है। साथ ही योगी आदित्यनाथ ने कहा कि महिलाओं की सुरक्षा, किसानों की जरूरतों और परीक्षाओं को सही तरीके से आयोजित कराने के लिए भी अधिकारियों को निर्देश दिए गए। महिलाओं और बेटियों की सुरक्षा को सरकार के शीर्ष प्राथमिकता बताते हुए निर्देश दिए गए। सभी जिलों में एंटी रोमियो स्क्वाड की गतिविधियां एक्टिव की जाए। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि आगामी नवरात्रि में मिशन शक्ति का एक नया चरण भी प्रारंभ होगा, जिसके लिए सभी जिलों को अभी से व्यापक तैयारियां कर देनी चाहिए। लखनऊ में एक अवैध पटाखा फैक्ट्री में ब्लास्ट हो गया, बिल्डिंग उड़ गई, 2 किलोमीटर तक धमाके की आवाज सुनी गई, आसपास के 2 से 3 मकान भी ढह गए। वहीं वहां पर जो लोग भाग थे वो बता रहे हैं कि हादसे में फैक्ट्री मालिक और उसकी पत्नी की भी जान चली गई, 2 लोग गंभीर रूप से घायल हैं, कई लोग मलबे में नीचे भी दब गए। वहीं प्रयागराज से एक बड़ी दर्दनाक खबर सामने आ रही है। तांत्रिक ने कहा कि पोते के 9 टुकड़े करना और उन टुकड़ों को अलग अलग दिशाओं में फेंक देना और ऐसे में प्रयागराज में एक दादा ने बलि दे दी। प्रॉपर्टी डीलर है दादाजी, जिन्होंने एक तांत्रिक के जाल में फंसकर अपने 17 साल के पोते की बलि दे दी। 25 अगस्त को स्कूल जाते वक्त बच्चे का किडनैप किया गया, तंत्र मंत्र किया और बच्चे की जान ले ली गई। फिलहाल अब पुलिस का सिकंजा कसा जा चुका है। आजकल के मॉडर्न जमाने में भी किस तरह से तांत्रिक लोगों को बहकावे में भटका देते हैं और जो लोग भटकते हैं उनकी भी कितनी बड़ी गलती है। पुलिस ने आरोपी तांत्रिक को तो रविवार को अरेस्ट कर ही लिया, इसी ने बलि देने के लिए कहा था और इसी ने ये सलाह दी थी कि बलि दे दें वरना पूरा परिवार तबाह हो जाएगा। कैसे कैसे लोग हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं बड़ी खबर। आरटीओ दफ्तर की 5000 किलो पुरानी फाइलें रिसाइकिल होंगी। लखनऊ आरटीओ दफ्तर ने अब बेकार और सड़ रही फाइलों को कूड़े की जगह उपयोगी बनाने की पहल शुरू की है। कार्यालय में वर्षों से जमा पड़ी करीब 5000 किलो पुरानी फाइलों को एक पेपर मिल को सौंपा गया जहां पर इन्हें रिसाइकिल कर नए कागज तैयार किए जाएंगे। झारखंड में फिर से लंपी वायरस का मामला देखा गया। लंपी रोग त्वचा रोग मवेशियों में मच्छर मक्खी जू और ततैया के काटने से और दूषित भोजन और पानी से फैल जाता है। इस बीमारी से बुखार और त्वचा पर गांठें हो जाती हैं और ये जानलेवा भी हो सकती हैं। रांची में एक बार फिर लंपी वायरस पैर पसार रहा है। एक अधिकारी ने बताया कि झारखंड के रांची जिले के कुछ हिस्सों में मवेशियों में लंपी वायरस जैसे लक्षण देखे गए। हालांकि उन्होंने कहा कि जिले में किसी भी जानवर की मौत की खबर नहीं है। झारखंड में कांग्रेस ने 7 जिलों के लिए पर्यवेक्षक नियुक्त किए हैं। जिला अध्यक्ष चुनने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। उत्तराखंड की पंचायतों में 33,490 पदों के लिए जल्द ही उपचुनाव कराने की तैयारियां हो रही हैं। हरियाणा से बड़ी खबर आप देखिए। मिशन 2029 के लिए लाडो लक्ष्मी योजना मास्टर स्ट्रोक साबित हो सकती है। 45 लाख महिलाओं को इस योजना का लाभ मिलेगा। हरियाणा सरकार ने दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना शुरू की है और इस योजना के पहले चरण में 1 लाख रुपए तक की वार्षिक आय वाले परिवारों की 23 से 60 साल की महिलाओं को 2100 रुपए हर महीने मासिक भत्ता मिलेगा, जिससे लगभग 20 लाख महिलाओं को लाभ होगा। 25 सितंबर को इस योजना का पोर्टल लॉन्च होने वाला है और 2100 रुपए मासिक भत्ता हर महीने माताओं और बहनों को मिलेगा। वहीं स्वयंभू संत रामपाल को पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट से राहत मिली है। उम्र कैद की सजा पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। 10 साल से जेल में बंद रामपाल के लिए रिहाई का रास्ता साफ हो गया है। हरियाणा में भी बाढ़ का खतरा, हथिनी कुंड बैराज से पानी छोड़ा गया। नदियों में बढ़े जलस्तर से हरियाणा में करीब 90 गांव प्रभावित हुए हैं। मौसम विभाग ने अभी राज्य में 1 से 5 सितंबर तक बारिश की संभावना जताई है, जिससे किसान भाइयों की चिंताएं और बढ़ी हुई हैं। हरियाणा में 1 सितंबर को 10 ट्रेनें भी रद्द रहेगी। पंजाब में बाढ़ के चलते रेलवे ने यह फैसला लिया है। पंजाब सीएम ने पीएम से 60,000 करोड़ मांगे हैं। बोले कि प्रति एकड़ 50,000 देने को तैयार, केंद्र मदद करें। 3 लाख एकड़ फसल डूबी हुई है। वहीं बिहार में एनडीए गठबंधन का सीट बंटवारा जल्दी। मंत्री सुमन ने कहा कि 25 तारीख तक फैसला होगा। छत्तीसगढ़ में भी अगले 48 घंटे भारी बारिश का अलर्ट है। झारखंड में भी फिर से बादल लौट आए और अगले 5 दिन तक कई इलाकों में हल्की से मध्यम बरसात देखने को मिल सकती है। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी किया है। अगले 48 घंटे में भारी बारिश की चेतावनी है। सोमवार को तो स्कूल कॉलेज भी बंद करने के आदेश दिए गए हैं। कुल मिलाकर दोस्तों उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश से लेकर जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान कई जगहों पर बारिश का कहर अभी देखने को मिल रहा है और बाढ़ से लाखों लोग प्रभावित हैं। हिमाचल प्रदेश के 9 जिलों में आज स्कूल कॉलेज बंद रहेंगे। भोपाल, इंदौर समेत 18 जिलों में बारिश देखने को मिली है। चलिए बात कर लेते हैं आज 1 सितंबर का राशिफल क्या कुछ कह रहा है। आज 1 सितंबर सोमवार को मेष राशि के लोगों को नौकरी में मनचाहा ट्रांसफर मिलने की संभावना है। वृष राशि वालों के लिए भी करियर में बदलाव करना फायदेमंद रहेगा। मिथुन राशि के लोगों को बिजनेस पर ध्यान देना चाहिए। कर्क राशि के लोगों को नौकरी में बदलाव की खबर मिलेगी। तुला राशि के लोग नौकरी और बिजनेस के फैसले खुद ही लें, इससे फायदा होगा। वृश्चिक राशि वालों का काम बढ़ सकता है। धनु राशि के लोग कामकाज में बदलाव करने की सोच रहे हैं तो रुक जाएं, बदलाव के लिए आज का दिन थोड़ा ठीक नहीं। मीन राशि के लोगों को कामकाज में दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है और बाकी राशियां हैं उनके लिए आज सितारों का मिला जुला असर देखने को मिलेगा। तो ये थे दोस्तों आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, हेडलाइंस और सुर्खियां अपडेट आज।
इस ऑडियो को पसंद करने के लिए और आगे भेजने के लिए 5 दबाएं। इसका ऑडियो आईडी नंबर आपको SMS कर दिया जाएगा।